نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ جو ہمیں نصیب کیا، اس میں یہی دعا ہے کہ ہم بہت زیادہ بہتر طور پہ عبادت بھی کر سکے، بخشش کروا سکے، قرب الہی پا سکے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے جو ہم مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ایوری ڈے ذکر دیا جاتا ہے، دعائیں دی جاتی ہیں، آپ اس کو ٹارگیٹ کو پورا کرتے ہیں، کہ یہ بہت ضروری ہے، ادروائز پھر یہاں پہ بیٹھنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا. آج انشاءاللہ تعالی کسی اور کے تجربے سے ہم ایک ایسی بات سیکھیں گے جو کہ انہوں نے بہت سالوں کی محنت کے ساتھ، بہت سالوں کی مشقت کے بعد سیکھی تھی. حضرت شقیق بلخی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حاتم سے کہا، تم اتنی مدت میرے پاس رہے ہو، تم نے کیا سیکھا ہے؟ یعنی یہ بہت عرصہ ان کے پاس رہے تھے، اور اتنے عرصے میں اب استاد اپنے شاگرد سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے میرے سے کیا سیکھا. تو حاتم نے جواب دیا، 8 باتیں سیکھی ہیں. اب یہ 8 باتیں کیا ہیں، ہم ان کو ایک ایک دن دیکھتے رہیں گے. آج میں آپ کو صرف پہلی بات بتاؤں گی. اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے عرصے میں صرف 8 باتیں سیکھی ہیں، لیکن جو 8 باتیں انہوں نے بتائیں وہ ان کی کئی سالوں کی محنت، کئی سالوں کی علم لینے اور اپنے استاد کی صحبت کا نتیجہ تھی. تو بڑی کام کی باتیں ہیں یہ. پہلی بات جو انہوں نے کہی تھی، فرمانے لگے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے تو مجھے معلوم ہوا کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے، یعنی جسے وہ بڑی محبت کرتا ہے. ہوتا ہے ایسے؟ اور کچھ نہیں تو کسی کے محبوب اس کے شوہر ہیں، کسی کے اس کے بچے ہیں، کسی کے کوئی اور چیز، کوئی کام اس کا محبوب ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے تو محبوب جدا ہو جاتا ہے. یہ کہنے لگے کہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے، دنیا میں تو انسان کسی نہ کسی طریقے سے محبوب سے چمٹا ہی رہتا ہے، مگر آپ دیکھیں جو ہی کوئی فوت ہوتا ہے تو چاہے اس کی محبوب چیز کچھ بھی ہو، وہ اس سے چھوٹ جاتی ہے، کوئی بھی رشتہ ہو. کہتے ہیں تو میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب بنا لیا تاکہ وہ قبر میں میرے ساتھ رہیں. سبحان اللہ، کتنی ان کی بات پتے کی ہے. دوسروں نے تو کوئی نہ کوئی محبوب بنایا تھا، مگر ان کے محبوب تو جدا ہو جانے والے ہیں. جس بندے نے نیکی کو اپنا محبوب بنا لیا تو نیکی تو اسے جدا نہیں ہوگی، قبر میں جو ہی لٹایا جائے گا ایک طرف نماز آ کے کھڑی ہو جائے گی، دوسری طرف روزہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، تیسری طرف زکوٰۃ آ کے کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف قرآن آ کے کھڑا ہو جائے گا. تو وہ انسان چاروں طرف سے اپنی نیکیوں سے گھر جائے گا. تو جب سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، انسان کے مال نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا، اس وقت نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں، جبکہ اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کسی ساتھی کی، اس تنہائی میں، اس وحشت میں، اور پھر جب حساب کتاب ہے اس وقت یہ نیکیاں اس کے ارد گرد آ جاتی ہیں اور اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہیں، قبر کا عذاب نہیں آنے دیتی. تو اس لیے جو چیز محبوب بنانے کی ہے وہ ہے نیکی، نیک اعمال، उनको जमा करना। हम देखते हैं कि जब हम नेकी करने का इरादा करते हैं तो हमारा कभी वैसे ही गफलत छा जाती है, कभी दिल इतना घुटता है कैसे करें, क्या करें, क्यों करें, कभी सुस्ती आने लगती है। तो इसके लिए एक बात याद रखिएगा, हो सकता है ये बात आपको हेल्प करे और नेकी करना आसान हो जाए। वो ये है कि ये यकीन रखिएगा कि आपने जो नेकी खलूस के साथ की है, कोई भी नेकी, तो अल्लाह ताला उसको रखता नहीं है, आपको वो वापस लौटा देता है किसी शक्ल में इसी दुनिया में। हम सबको ये मालूम है कि आखरत में तो मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, एक ज़र्रे के बराबर भी खैर होगी तो वो उसको देख लेगा। मगर हम चूंकि बड़े बेसब्रे होते ना, हमें जल्दी मिलने वाली चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, उसकी तरफ ज़्यादा लपकते हैं। तो आखरत का तो हम सबको मालूम है, लेकिन आज इस बात को भी लिख लें कहीं कि आप जब भी नेकी खुलूस से नियत से करेंगे, कोई लालच नहीं हो, कोई रया नहीं हो, कोई दिखावा नहीं हो, कोई तारीफ चाहना नहीं हो, इन गंदगियों से पाक हो, प्योर नेकी आप जब करेंगे ना, अल्लाह ताला इसका बदला दुनिया में भी दिखा देंगे और आपको आपकी ज़िंदगी में ना भी मिले तो आगे आपकी नस्लों में वो आपको मिलेगी, आपकी नस्लों में उसका इफ़ेक्ट जाएगा। और इस बात को मैं खुद नहीं कह रही, इसका सबूत कुरान देता है। क्या कहा है सूरह कहफ में, अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे बता दिया कि वो जो जिनके खिज़र और मूसा अलैहि सलाम के वाक़े में, कि जब खिज़र अलैहि सलाम ने दो बच्चों के लिए उस दीवार को सही किया था, तो क्या क्या वजह थी उसकी। दो यतीम बच्चे थे ना, आप सब जानते होंगे जो भी सूरह कहफ पढ़ते हैं, कि खिज़र अलैहि सलाम ने उनके जो ख़ज़ाना था उसको दीवार के नीचे दफन कर दिया, जब ये बड़े होंगे तो फिर उस ख़ज़ाने को पाएंगे। उस वाक़े में आपने गौर किया, उन बच्चों की तो खुद उनकी अपनी नेकी का कोई जिक्र नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है इस सूरत में आयत नंबर 82 में, वकाना अबूहुमा सालिहन, के उनका बाप नेक था। इसका मतलब क्या है कि बाप की नेकी की वजह से उसकी औलाद के साथ अल्लाह ताला नेकी फरमाता है, उसकी औलाद की हिफाजत फरमाता है। तो अल्लाह ताला नेक इंसान की भी हिफाजत करते हैं, नेक बंदे की भी हिफाजत। जैसे आपने उससे पहले वाक्य में देखा कि अल्लाह ताला ने वालदैन से उनका बेटा ले लिया, किस वजह से, कि वो बच्चा उनके लिए भाई से खैर नहीं बनेगा, वो बच्चा उनके लिए फितने का बायस बनेगा, शर का बायस बनेगा। तो अल्लाह ताला ने उनका भी ख्याल रखा। अल्लाह अपने मोमिन बंदों की हमेशा मदद करता है, उनका ख्याल करता है। जो नेक होता है उसकी अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि उसकी औलाद में या अगली उसकी पुश्तों में उस नेकी का असर आया। अगर कोई इंसान नेक है तो ज़रूर उसका असर, नेकी भलाई का असर दुनिया में ही मिल जाएगा, आखरत में तो इंशाल्लाह मिलेगा ही। और देखें आप कि जब इंसान कोई नेकी करता है तो कैसे रब्बे रहीम उसका ख्याल रखता है। एक का बच्चा फौत कर दिया ताकि माँ बाप के ईमान को बचा सके, और दूसरे खुद फौत हो चुके हैं, पेरेंट्स फौत हो गए, वो मौजूद नहीं है, मगर रब ने उनकी औलाद की खुद टेक केयर की है। तो इसका फल औलाद को मिला ना। एक रिवायत में भी आता है कि अल्लाह ताला नेक आदमी की औलाद की 7 पुश्तों तक हिफाजत फरमाते हैं। मोहम्मद बिन मुनकदर ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी एक आदमी की नेकी की वजह से उसकी औलाद, उसकी औलाद की औलाद और उसके मोहल्ले वालों की भी हिफाजत फरमाता है। ये साबित करता है कि अल्लाह ताला इंसान को जो उसकी नस्लों में भी आगे कोई नुकसान होने वाला है उससे भी उनको बचा लेता है, उसके भी अल्लाह ताला इंतजामात करता है। ये बात इसलिए मैं आपके आगे रख रही हूँ क्योंकि वालदैन को अमूमन ये फ़िक्र होती है, ख़ास तौर पे जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, कि पता नहीं हमें कुछ हो गया, बच्चों का क्या बनेगा, क्या होगा। तो इस आयत को जहन में रखते हुए ये समझ जाएं कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अगर मैं नेकियां करने वाली हूं तो मेरी ज़िंदगी में मैं पाऊं या नहीं पाऊं, मेरी औलाद पालेगी ज़रूर। इसीलिए शायद कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, कि नेकी करके भूल जाओ, क्योंकि आप भूल भी जाएं तो अल्लाह के पास तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, वो नहीं भूलता। तो जब नेकी करें तो तसल्ली रखें कि इसके पीछे मुझे आखरत में तो मिलेगा ही, दुनिया में भी मैं ना सही मेरी औलाद को मिल जाएगा, जाता कहीं नहीं है। क्योंकि इंसान अपनी औलाद के लिए बड़ा हरीस हुआ करता है ना, वो चाहता है मेरी औलाद के लिए मैं ये कर जाऊं, वो कर जाऊं, इतना जमा कर जाऊं, इतना कुछ हो जाए ताकि इनको ना कभी मुश्किल हो। इसके लिए हमारे यहाँ आप देखते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, कोई पता नहीं इंश्योरेंसेस होती हैं कि आज इतना इतना हमें अदा करते रहें और इतने इतने साल बाद हम आपको इतना दे देंगे, और अगर आप ना रहे तो आपके बच्चे को दे देंगे। अब आप बड़े शौक से इनको लेते हैं, कोशिश यही होती है कि चाहे और कहीं से कमी करनी पड़े मगर इस फंड में बच्चे के लिए ज़रूर जमा करा जाए, क्योंकि हमें यकीन होता है ना कि जब हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चे को मिल जाएगा। हालांकि जिनके पास आप इन्वेस्ट करते हैं वो तो इंसान है, इंसानी कंपनीज़ हैं, वो कभी डिफ़ॉल्ट में चली जाती हैं, कभी बैंकक्रप्ट हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, मगर फिर भी हम कितने यकीन से अपनी खून पसीने की कमाई उनमें डालते रहते हैं इस भरोसे के साथ कि यहाँ से मिलना है। और एक अल्लाह के पास भी तो इन्वेस्टमेंट है जहाँ ना बैंकरप्सी का ख़तरा है, ना किसी खसारे में जाने का ख़तरा है, जिसका यकीन है कि जो वादा उसने किया वो ज़रूर पूरा होगा। इस सूरत को हम जब पढ़ते हैं हर जुमे को, क्या हम ये नहीं यकीन रखते कि वहाँ जमा करवाने से वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, वो भी एक प्लान है, वो भी एक इंश्योरेंस है कि मैं नेकी करूंगी तो इसका बदला अल्लाह ताला मेरी औलाद में दिखाएगा। लेकिन हम क्यों ऐसा नहीं करते? इसलिए कि जूं ही हम नेकी करते हैं हमें इतना फौरन ये एक उम्मीद हो जाती है कि जिससे हमने नेकी किया वो ही हमें बदला दे, अब उसकी तरफ से कुछ बदला आना चाहिए, उसकी तरफ से भी अब इन रिटर्न हमें ये मिलना चाहिए और जल्दी से मिल जाना चाहिए। रब की रहमत के ख़जानों की तरफ हम नहीं तवज्जो करते, इसी वजह से मायूस भी होते हैं। और कितनी दफ़ा लोग ये कहते हुए सुने गए हैं कि हमने तो इनके साथ इतना किया इतना किया, क्या मिला हमें, हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमने तो नेकी की और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो हमें इसका कुछ बदला ही नहीं दिया। तो आपसे किसने कहा था कि आप उनसे उम्मीद लगाएं? आपने उनसे उम्मीद लगाई जो खुद फ़कीर हैं, जो कुछ भी नहीं दे सकते। उम्मीद लगानी थी तो कम से कम उससे लगाते जो गनी है और जो दे के थकता नहीं है। लाखों लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रोज़, मगर इन्वेस्टमेंट करके वो फ़कीरों से चाहते हैं कि वो आपको इन रिटर्न दें। ऐसी तो इन्वेस्टमेंट भी बेकार है, जिन जहाँ पे आप लगा रहे हैं। जब आप ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेते होंगे तो देखते तो होंगे ना, रिसर्च करते होंगे कौन सा अच्छा है, कौन सा क्या देगा, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है इस कंपनी की, कितने सालों से ये है, इनकी बात कितनी सच्ची है। ऐसे तो नहीं कि बिल्कुल ही जो फ़कीर कंपनी हो, यही जहाँ से नहीं मिलना हो वहाँ पे आप लगा देते हो, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। लेकिन जब आप नेकी करके किसी के साथ और उससे बदले की उम्मीद रखते हैं, तो आपने यही किया, फकीरों के पास अपनी इन्वेस्टमेंट करवा दी। पर बहुत कम ही लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। तो अल्लाह ताला की सारी मखलूक के साथ भलाई करें, नेक का माल करें, नेकियां करें, इनको जमा कीजिए। क्योंकि वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं वो तबाह हो गया, आज टुडे उसके यस्टरडे से बेहतर नहीं है तो वो तबाह हो गया। यानी हर दिन आपको अपने पास्ट से ज़्यादा बेहतर गुजारना है, और नेकियां करें उसके अंदर, और अपने आप को खालिस करने की कोशिश कीजिए, और गुनाहों से छुटकारा पाने की कोशिश करें, नेकियों में और तेज़ दौड़ लगाएं। और इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको, भलाई के काम करना, अल्लाह की तमाम मखलूक के साथ भलाई करना, चाहे वो कोई रिश्ता रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे हमसाया हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, चाहे खून के रिश्ते हों, मैके वाले हों, या ससुराल वाले हों, हम अपने दिलों को बड़ा करें, नेकी करने में दिल को तंग ना करें कि इसके साथ तो करूँगी और उसके साथ नहीं करूँगी। वो किसी ने बड़ा अच्छा सा शेर कहा है ना कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। जब आप ज़मीन वालों के साथ अच्छाई करते हैं तो अल्लाह ताला अर्श पे, वो जो अर्श पे है वो आप पे मेहरबान होगा। तो नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। हम कहते हैं ना क्या फ़ायदा हुआ, असल में इसलिए वो कह रहे होते हैं, हम आपको ये बात मेरी यकीन इसलिए नहीं आई, नहीं हमारी तो ज़ाया हो गई नेकी, हमने क्या पाया, हमने तो ये किया, हमने तो कितनों के साथ किया, हमें तो भाई कहीं से भी नहीं मिला कुछ। इतने लोगों को इस तरह से रोते हुए देखा। असल बात ये, नेकी ज़ाया नहीं होती, लेकिन आप जिस जगह लगाते हैं वहाँ से थोड़ी आपको कुछ मिलना था, वहाँ पे तो ज़ाया होनी ही थी क्योंकि वो नेकी ही नहीं रही। आपने गलत जगह से एक्सपेक्टेशंस लगाई ना, गलत दर पे रहे। जहाँ से एक्सपेक्ट करना था अगर वहाँ के लिए उम्मीद लगाई होती तो कभी नेकी ज़ाया नहीं जाती। इस रमज़ान में अगर हम ये अहद कर लेना कि मैंने हर एक के साथ भला करना है, हर एक के साथ, दीन है ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन खैरख्वाही का नाम है, हर एक की खैरख्वाही करनी, हर एक के साथ मैंने अच्छा ही रहना है, इररिस्पेक्टिव वो क्या करता है क्या नहीं करता, मैंने अच्छा रहना है, तो आपकी ज़िंदगी के लिए ये बहुत बड़ी खैर है। क्योंकि किसी ने पूछा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सबसे अच्छा इंसान कौन है? फरमाया जिसको लंबी उम्र मिले और वो नेक आमाल कर ले उसमें। समझ आई बात? नेक आमाल करने वाली उम्र मिल जाए। लंबी उम्र तो लोगों को मिलती है, आमाल नहीं होते, या कई बेचारे नेकियां कर रहे होते लेकिन उम्र इतनी उनको मोहलत नहीं देती। देखो जिसको लंबी उम्र भी मिल जाए और वो पूरी उम्र नेकियां ही करता रहे, इसका मतलब है ज़िंदगी को भी गनीमत जाने, इस ज़िंदगी की भी कदर कीजिए, इस वक्त की जो आपको मिला है इसकी कदर करें। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा शो में आके कि हमें तो जैसे ज़िंदगी की कोई परवाह ही नहीं है, बस कल मौत आ जाए तो हमें तो बहुत वो, हमें कोई नहीं परवाह, हमें ज़िंदगी की नेमत मिली, ये बहुत बड़ी नेमत है क्योंकि इसके ऊपर हमारी पूरी आखिरत डिपेंड करती है। तो जिसको लंबी उम्र भी मिल गई और उसमें उसने नेकियां भी कर ली। एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया ऐसे आदमी के लिए बहुत ही अच्छा घर है जो इसको आखरत में कामयाबी का जरिया बनाए और अल्लाह को इसके ज़रिए राज़ी कर ले, उसके लिए तो ये दुनिया बहुत अच्छी है, और ऐसे आदमी के लिए बहुत ही बुरा घर है ये दुनिया, जिसको आखरत के लिए काम करने से रोक दे और अल्लाह को नाराज़ कर दे। तो इसलिए उन लोगों के लिए दुनिया में रहना, ज़िंदगी मिलना बहुत अच्छा है, जो इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लें और ज़िंदगी में अपने रब को राज़ी कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला इस रमज़ान में अपने आप से ये अहद करना है कि मैंने नेकियां करते चले जाना है, और इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप अल्लाह के पास उम्मीद लगाएं, ए अल्लाह इसका मुझे दुनिया में भी देना बदला और आखरत में भी देना, इसमें कोई हर्ज नहीं। लोगों से नहीं लगाएं, अल्लाह से जितनी मर्ज़ी लगाएं उम्मीद, जितना मर्ज़ी मांगे, अल्लाह ताला मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि इसको मेरी औलाद में मुझे दिखाना, बिल्कुल आप ये दुआ कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई देखो इसने दुनिया की खातिर कर लिया या इसने नहीं, अल्लाह ताला के पास दुनिया भी है और आखरत भी है। हाँ वो लोग सही नहीं जो आखरत नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि दुनिया में इसका बदला मिल जाए उनको, वो नहीं, वो दुरुस्त बात नहीं है। मगर जो दोनों जगह चाहता हो, क्योंकि अल्लाह ताला के पास दोनों जगह के ख़जाने हैं, तो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इसका बदला जो नेकी करें इसका बदला, या अल्लाह मुझे दुनिया में भी अता फरमाइएगा मेरी औलाद के साथ भलाई की सूरत में और आखरत में भी दें। तो क्यों हम कम पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, इंशाल्लाह ज़्यादा पे करेंगे, और अल्लाह ताला से दोनों जहानों की भलाइयाँ मांगेंगे। इसीलिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, फिर दुनिया पहले दुनिया, दुनिया में हसना मिलेगी तो फिर वफिल आखिरती हसना, आखिरत तो तभी हसना बनेगी ना। तो इस चीज़ से बेपरवाह नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला नेकियां करना हमारे लिए आसान बना दे, हमारा दम ना घुटे नेकी करते वक्त, हम लोगों से उम्मीदें ना लगाएं, अपने रब से लगाएं जिसके ख़जाने कभी ना ख़त्म होने वाले हैं। अच्छा जनाब, आज की सुन्नत जो है वो है पानी पीने की। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सांस में पानी पीते थे, जब बर्तन से मुंह लगाते थे तो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, जब दूर करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, इसी तरह 3 बार किया करते थे ना। एक और बड़ी अच्छी मैंने बात पढ़ी अबू दाऊद की, ये रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़िबला रुख बलगम या थूक ना फेंको, क़िबला रुख क़िबले की तरफ ना फेंको, तो इससे ज़रा परहेज़ करना चाहिए, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और फरमाया जिसने ऐसा किया फिर वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि वो बलगम इसकी दोनों आँखों के दरमियान चिपका हुआ होगा। तो किबले की तरफ ना तो पीठ करनी चाहिए टॉयलेट में, जिनके अब टॉयलेट्स ऐसे बन चुके हैं वो तो अलग बात है, लेकिन कोई बनवा सकता हो तो ज़रूर कोशिश करें कि किबले की तरफ ना पीठ हो और ना ही मुंह। अच्छा जी, अब आप अपनी तस्बीह नमाज आज पढ़ सकते हैं। तस्बीह नमाज का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तस्बीह नमाज की ताकीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को की थी, और बाज़ जगह मुझे ईमेल्स भी आईं कि ये पता नहीं ज़ईफ़ है बात या ये सही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसकी जो सनद है बहुत सी चेन से ये रिवायत मिलती है और सही रिवायात मिलती हैं इस बारे में। इसका तरीका आपको बताई देती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से आपने बताई हमें, क्या कैसा तरीका बताया कि 4 रकत नफल इस तरह से पढ़ें, हर रकत में आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे जैसे आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं आप, और कोई और सूरत आपने जैसे पढ़ी हर नमाज में जैसे आप करते हैं, बस रुकू में जाने से पहले जब आपने सूरत कंप्लीट कर ली तो उस वक़्त क़याम की हालत में खड़े खड़े 15 टाइम्स आपने सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाह इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये पढ़ना, ठीक है, 15 टाइम्स आपने ये पढ़ा, और कैसे इसको गिनेंगे? आसान तरीका तो जो मुझे लगता है, कोई हदीस में नहीं है ये, मैं अपने तौर पे बता रही हूँ, आप अपनी जो भी जिस हाथ की उंगलियां हैं तो इनको दबाते जाएं, जिस नंबर पे भी आप हैं, पहली को दबाया, दूसरी को कि 2 हो गई हैं, 3 हो गई, 4 हो गई, इस तरह से करके। फिर आप रुकू में जाएं, रुकू में जाके आपने जब पढ़ लिया रुकू की तस्बीहात को, सुभान रब्बी अल आला, सॉरी सुभान रब्बी अल आजीम, तो फिर उसके बाद आपने इन्हीं कलिमात को, ये तीसरे कलमे को आपने 10 टाइम्स पढ़ा, फिर आप रुकू से खड़े हो गए, जैसे हम नमाज में होते हैं, वो पूरी वैसे ही है जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ ये तस्बीहात को आपने ऐड कर लिया। फिर आपने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और उसे सारा पढ़ के रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद आपने 10 बार यही कलिमात पढ़े, यानी हर जगह अब आप 10 10 टाइम्स पढ़ेंगे, सिर्फ क़याम में 15 टाइम्स है। फिर आप सजदे में चले गए, सब सजदे में आपने पढ़ लिया सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिही, तस्बीह आपने कर ली सजदे की, 10 टाइम्स पढ़ा, फिर उसके बाद सॉरी ये 10 टाइम्स ये वाला कलमा पढ़ा तस्बीह के बाद, सजदे की तस्बीह के बाद 10 दफ़ा तीसरा कलमा, फिर सजदे से सर उठाएं। जब आप बैठते हैं बीच में, तो हम तो बैठते ही फ़ौरन दोबारा सजदे में चले जाना, फ़ौरन नहीं जाना, जब बैठे आप उसमें फिर से ये 10 टाइम्स पढ़ा, फिर दूसरा सजदा आपने किया उसमें भी सजदे की तस्बीह करके फिर 10 टाइम्स ये पढ़ा, फिर दूसरे सजदे से उठे, अब खड़े नहीं हो जाना एकदम, बैठे और उसमें फिर ये 10 टाइम्स पढ़े, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये कुल 75 तस्बीहात हो जाएंगी, और चारों रकत में आप ये इसी तरह अमल दोहराएंगे। जब आपने तशहुद में बैठना है ना अत्तहियात पढ़ने के लिए, तो उससे भी पहले आपने फिर 10 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है? तो आसान ही है ये, मगर इसका अजर बहुत है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप ये आज अदा कर सकें, फ़र्ज़ नमाज नहीं है, कोई नफली नमाज है, अगर आप नफल पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो ज़रूर कीजिए। थोड़ी सी मैं वितर के ऊपर आपको बात बता दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वितर का पढ़ने का तरीका क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर जब पढ़ा करते थे, तो असल में वितर के मामले में आपने बताया कि वितर आखिर रात में एक रकत है, यानी जब सारी ईशा भी पढ़ी, हम सोचते ना ईशा का पार्ट है वितर, ईशा का पार्ट नहीं है, असल में पूरी रात की इबादत के एंड में वितर पढ़े जाते हैं, पूरे दिन की रात की सारी नमाजों को, दिन की नमाजों को तो मगरिब वितर कर देती है, वितर क्या होता है ऑड, ऑड कर देती है, और रात की नमाजों को जितनी भी तहज्जुद है या ईशा है उसको वितर ऑड कर देती है। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो यही फरमाया कि रात की नमाज 2 2 रकते हैं, जब सुबह होने का ख़तरा हो कि सुबह होने वाली है, यानी तहज्जुद पढ़ ली आपने, बिल्कुल सारी नमाज़ें आपने कंप्लीट कर ली हैं रात की जितनी भी थी, तो 1 रकत पढ़ लो, ये 1 रकत पहली सारी नमाजों को ताक कर देगी, ऑड कर देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रकत वितर पढ़ते तो आखिरी 2 रकतों में और 1 रकत के दरमियान सलाम फेर के बातचीत भी करते थे, यानी जब 3 वितर पढ़ने लगते थे तो 2 पहले पढ़ते थे, फिर सलाम फेर लेते थे, फिर बातचीत भी करते थे, फिर उसके बाद उसके बाद जो एक और वितर है वो अलग से अल्लाहु अकबर कह के फिर पढ़ा करते थे। तो एक रिवायत में ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की 2 और 1 रकत में सलाम से फासला करते थे, यानी सलाम फेर लिया करते थे। और इसकी एक और रिवायत, बहुत सारी सनदों से रिवायात वितर के बारे में आती हैं कि वितर की 2 रकतों के बाद सलाम फेर के फिर 1 रकत अलग से पढ़ने के बारे में। ये भी आता है कि 3 रकतें बगैर तशहुद में बैठे हुए, यानी 1 तशहुद के साथ जो आखिरी होगा उसके साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वितर जो है वो मगरिब की मुशाबहत से ना हो, मगरिब की मुशाबहत ना करता हो, यानी मगरिब की नमाज में हम कैसे होते हैं, दो रकत पढ़ते हैं, फिर अत्तहियात पढ़ते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं ना, ये इस तरह ना हो। तो इससे पता चलता है कि वितर पढ़ने हो तो एक तशहुद और एक सलाम के साथ, या फिर दो तशहुद और दो सलाम के साथ पढ़े। ठीक है, यानी दो तशहुद कैसे हो गए, दो पहले पढ़ ली, सलाम फेर लिया, फिर एक के लिए खड़े हो गए, फिर एक पढ़ के सलाम फेर लिया। इन तरीक़ों से, या फिर एक तशहुद और एक सलाम, तो मैंने आपको बताया कि तीनों दफ़ा आपने खड़े हो जाना है, तो इन दोनों तरीक़ों में मगरिब की नमाज से कुछ मुशाबिहत नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तरीका आपको बताना ज़रूरी था। आज का जो ज़िक्र है वो इतना खूबसूरत ज़िक्र है, जिसके बारे में सही बुखारी में रिवायत आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुआ 100 मरतबा पढ़ेगा, यानी इस ज़िक्र को 100 टाइम्स करेगा, उसे क्या मिलेगा, 10 गुलामों की आज़ादी का सवाब मिलेगा। आप सोच लें कि 10 गुलाम आपने, जिनकी गर्दनें बंधी हुई थी, उनको आज़ाद करा दिया। इसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 बुराइयां ख़त्म कर दी जाएंगी, वो तमाम दिन शैतान के शर से महफूज रहेगा, और इससे किसी शख्स का अमल बेहतर नहीं होगा, मगर वो जिसने इससे भी ज़्यादा अमल किया। समझ आई, इसने तो 100 दफ़ा पढ़ा, उसने इससे भी ज़्यादा कर लिया, तो उसका ही अमल इससे बेहतर हो सकता है, वरना किसी और का अमल इससे बेहतर नहीं होगा। इतना प्यारा ये कलाम है, इतना प्यारा ज़िक्र है ये। और ज़िक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वहदहू वो अकेला है, ला शरीक लहू उसका कोई शरीक नहीं है, लहुल मुल्कु बादशाहत उसी की है, व लहुल हम्दु और तारीफ भी उसी के लिए, वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर वो हर चीज़ पे पूरी कुदरत रखता है। तो ये बहुत प्यारा ज़िक्र है। इस मैंने जैसे कल ज़िक्र की बात की थी, तो ज़िक्र में देखें 100 दफ़ा तो आप पढ़ेंगे, लेकिन हम तो पूरे दिन का ही ज़िक्र करते हैं ना, तो 100 दफ़ा तो आप गिन के तो ज़रूर ही कीजिए, उसके अलावा भी चलते फिरते उठते बैठते, जो पाक हैं जो नापाक हैं सब भी कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं कुछ और पढ़ सकते, ये ज़िक्र तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल फारिग होके हाथ उठा के ना बैठ जाइए, चलो अब कुछ नहीं करना तो अब मैं फारिग हूँ, अब मैं ड्रामे देखती हूँ और रिसाले पढ़ती हूँ, नहीं, अब आप ये ज़िक्र कीजिए, ज़िक्र का अहतमाम करें। आज की आपने दुआ नोट कर लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व अमलन मुतकब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ ऐसे इल्म का जो नफ़ा मंद हो, जो फ़ायदा दे। कि देखिए, उलूम तो हम बहुत से हासिल कर लेते हैं, आपने कई कोर्स किए होंगे, कई पढ़ाइयाँ की होंगी, अब उनको आप क्या फ़ायदे में ला रही हैं, कुछ भी नहीं, ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनका। कुछ आपने, हो सकता है कोई साइंसेस सीखी हों, कोई ऐसी हुनर सीखे हों, कोई ऐसी क्लासेस ली हों, आज आप उनसे कुछ भी फ़ायदा नहीं उठा पा रही। तो ऐसा अल्लाह ताला, मैं तुझसे ऐसे इल्म का सवाल करती हूँ जो नफ़ा मंद हो, और इसमें फिर दीन का इल्म भी, कि या अल्लाह वो इल्म जिससे मुझे फ़ायदा हो। दीन के इल्म की भी हम कई दफ़ा यही है कि कॉपियाँ भर के, रजिस्टर भरे हुए हैं भरे हुए हैं, कागज़ ही काले करते जा रहे हैं, फ़ायदा उससे कुछ भी नहीं ले रहे, तो उस इल्म का क्या फ़ायदा। तो अल्लाह, मैं तुझे तुझसे नफ़ा मंद इल्म का सवाल करती हूँ, इल्मन नाफ़ियन व अमलन मुतकब्बलन, जिसकी हमें आजकल बहुत ज़रूरत है। अल्लाह, ऐसा अमल जो कबूल हो, या अल्लाह ऐसा अमल करने की हमें तौफीक देना जो कबूल होने वाला अमल हो, रिजेक्टेड अमल ना हो। रिजेक्ट कब होते हैं, जब उनमें रियाकारी आ जाए, जब उनमें शोहरत की उम्मीद आ जाए, जब उनके अंदर और इखलास ना रहे, या जो सुन्नत से हटे हुए हों। अल्लाह, वो अमल नहीं वो अमल जो आपको भूल कर लें, अल्लाह उनकी तौफीक दे। ये तौफीक मांग रहे हैं ना आप। और रिज़्क़न तय्यबा, और ए अल्लाह पाक रिज़्क, पाकीज़ा रिज़्क, जिसमें हलाल भी आ गया, जिसमें वैसे भी पाक साफ रिज़्क आ गया। तो ये बहुत ही तीनों जो सवाल है ना, बहुत ही बड़ी भलाइयों के सवाल हैं। बहुत बड़ी भलाइयाँ इंसान को मिल सकती हैं, इल्म ऐसा मिल जाए, अमल आपका कबूल होने लगे और तय्यब रिज़्क मिल जाए। तो आज इंशाअल्लाह ताला आप कुरान का छठा पारा पढ़ेंगे। कोशिश करा कीजिए कि साथ साथ ज़रा तर्जमे पे भी नज़र रहे, ताकि इंशाअल्लाह आप जब साथ पढ़ें तो आपको आपके तर्जमे की रिवीजन हो जाए करें इंशाअल्लाह ताला। आज आपके लिए जो नमाज में आपको मैं आगे बता रही थी नमाज का तर्जुमा, तो जब इंसान नमाज शुरू करता है, आपने उम्मीद है कि तर्जुमा याद कर लिया होगा इसका शुरू का, तो वो पढ़ के फिर आप सुभानक अल्लाहुम्मा ये पढ़ के फिर आप उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते हैं। उसका तर्जुमा तो सभी को आता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद आप कोई ना कोई सूरत पढ़ते हैं, उसके बाद आप अल्लाहु अकबर करके रुकू में चले गए। सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, मेरा परवरदिगार, अल अज़ीम बड़ा अजमतों वाला। और उसके बाद आप खड़े हुए और आपने कहा समिअ अल्लाहु, सुन लिया अल्लाह ने, लीमन हमीदहू, उसकी बात जिसने उसकी तारीफ़ की। अल्लाह ने उसकी बात सुन ली है, बंदे को खुद बोल रहा है और उसको खुद ही नहीं पता। अल्लाह ने तो सुन ली, हम खुद भी सुन रहे होते हैं कि नहीं कि हमने क्या कहा। समय अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया उसकी बात को जिसने उसकी तारीफ़ की है। रब्बना, ए हमारे रब, लक अलहम्द, ल लिए का तेरे, अलहम्द सारी तारीफ है। कितने प्यारे कलिमात है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है नमाज, अगर आपको उसका तर्जुमा आता हो, समझ में आए। ठीक है, अल्लाह ताला हमसे अमल मुतकब्बल करा ले, और ये जो हमने आज सुना है ये नाफे इल्म बन जाए हमारे लिए। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك